ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने देश में ई वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति तैयार की है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना तथा इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है। इस नीति के अंतर्गत कंपनियों के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा 4,150 करोड़ रुपए रखी गई है। हालांकि अधिकतम निवेश की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कंपनियों के पास विनिर्माण सुविधा तैयार करने और ई वाहन का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए 3 वर्ष का समय होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 8,000 से ज्यादा ई वाहनों का आयात करने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की जाएगी। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 267 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। प्रधानमंत्री ने आज केरल के पथनमथिट्टा जिले में लोकसभा चुनाव अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मोदी ने पथनमथिट्टा और मवेलिकरा लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में केरल में जीत दर्ज करेगी। श्री मोदी ने कहा कि राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारों के अंतर्गत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में भी जनसभा को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और ये भारत की समावेशी परंपराओं और मानवाधिकारों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नई दिल्ली में आज मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर अमेरिका के विदेश विभाग के वक्तव्य पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का मानना है कि ये सूचना गलत और अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। श्री जायसवाल ने बताया कि हैती में जारी स्थिति को देखते हुए 24 घंटे के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। डोमिनिका के सेंटो डोमिंगो में भारतीय दूतावास ने एक आपात हेल्पलाइन की स्थापना की है। नियंत्रण कक्ष से संपर्क के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ये नंबर है 1800118797। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत भूटान के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को अत्यधिक महत्व देता है। उन्होंने कहा कि भारत की ये नीति भूटान की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप जारी रहेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच ये साझेदारी ऊर्जा, सहयोग, विकास, लोगों के बीच आपसी संपर्क, व्यापार और निवेश क्षेत्र में है। भूटान के प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस समय शीर्ष स्तर पर है और इसके और बढ़ने की आशा है। एक कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय के बीच अधिक समन्वय पर बल दिया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी किया। इन कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान आधे वेतन पर काम किया था। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना शाम 7:30 पर दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।